اب غزوہ احد کے تناظر میں ایک دم سود کی آیت آ رہی ہے، کیوں؟ کہ اصل جو فتح شکست میں بدلتی ہوئی دکھی، اس کی وجہ مال کی محبت تھی، اور مال کی محبت انسانوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. اس لیے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے، اور اس آگ سے ڈرو جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس کو ہائی لائٹ کر لیں، اطیع اللہ و رسول، یہ ہے سراجم منیرہ کا مقام. رحم پانا چاہتے ہو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. تو دیکھیے ذرا ان آیات پہ تدبر کیسے کریں گے. عمل کی باتیں، آپس میں اختلاف رکھنے والے لوگوں کے درمیان صلح کروائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صلح کو پسند کرتا ہے. اسی طرح مسلمانوں کو سود کے دینی اور دنیاوی نقصانات سے خبردار کرنا ہے. دوسرا مقام ہے جہاں سود کا تذکرہ آیا، اور یہ کچھ کچھ پاروں کے بعد آتا ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میرے اوپر کسی بھی طرح کا اگر کوئی سود کا لین دین ہے تو مجھے اس سے پاک کر دیں. لوگوں کو اچھی بات کی خوشخبری دیں جس سے وہ خوش ہو جائیں. بہت سارے لوگوں کو دین کا یہ انداز نہیں پتہ، اور وہ کیا ہے کہ دیندار وہ نہیں جو لوگوں کو صرف ڈرائے، بلکہ دیندار وہ بھی ہے جو لوگوں کو خوشخبریاں بھی دیں. اپریسیشن، ریوارڈز، یہ لوگوں کے اندر جرت پیدا کرتے ہیں. خاص طور پہ نئے نئے آئے ہوئے لوگ، ڈبے ڈرے ہوئے دبکے ہوئے لوگ بےچارے کانپتے ہوئے آتے ہیں. وہ تو ہماری دین کی محفلوں میں آنے سے پہلے گھبرا رہے ہوتے ہیں، ہائے میرے کپڑے ٹھیک ہیں، میرا حلیہ ٹھیک ہے، وہاں کچھ کہیں گے تو نہیں، یہ تو نہیں، وہ تو نہیں. تو آپ لوگ اپنے آپ پہ بھی رشک کیا کریں. اللہ نے آپ کو اتنے پیارے دین سے جوڑا کہ جس میں نئے آنے والوں کو ویلکم کیا جاتا ہے. اب ان آیات پہ تھوڑی سی بات کریں گے رہنمائی لیتے ہوئے، اور وہ کیا ہے کہ یہ ساری غزوہ احد اور بدر کے بیچ کی آیات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جنگوں کو تربیتی کورس بنا دیتا ہے. اور اس میں ہمیں جو باتیں سکھائی جا رہی ہیں وہ کیا ہیں کہ احکامات پر عمل اور منع کردہ چیزوں سے رکنا، یہی تقوی اور شکر کا ایک نام ہے. ہم تقوی اور شکر کے نام پر اگر اچھی باتوں کو کرنا اور بری سے رکنا نہیں چھوڑتے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر یہ خوبیاں نہیں. صبر کرنے اور اللہ سے ڈرنے والوں کی مدد اللہ تعالیٰ خفیہ ذرائع سے کرتا ہے. اس کو لکھ لیں، یہ ہے انٹیلیجنسیا. اندر کھاتے کون ہے آپ کی مدد کرنے والا، کون ہے جو آپ کے لیے یہ کر رہا ہے، کون ہے جو وہ کر رہا ہے؟ تو لکھ لیجئے، صبر اور اللہ کا ڈر. صبر اور تقوی آپ کو اس صورت اور اس پارے میں بہت کثرت سے دکھ رہا ہے. اللہ کا ڈر راستوں کو ہموار کرتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. آگے پڑھیں گے 28ویں پارے میں، مَن لَّزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَّخْرَجًا. جو استغفار کو لازم کر لیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ اس کو ہر تنگی سے نکال دے گا. پھر صبر کرنے کہ سارے درجے بھی آپ کو مجھے معلوم ہونے چاہیے. سود کی ساری قسموں سے بچی اور لوگوں کو اس سے بچائیں. اب چند باتیں غور و فکر کی، کیونکہ یہ رکوع بہت اہم ہے. غزوہ بدر میں فرشتوں کے نزول کی خوشخبری مسلمانوں کی دل جوئی اور اطمینان کی خاطر تھی. کیا اللہ تعالیٰ کی مدد آج بھی حق والوں کے ساتھ ہے؟ بالکل. آج بھی دنیا میں جگہ جگہ جہاد ہو رہا ہے. کبھی ایسے مجاہدین کے قصے پڑھیے، کبھی ان کی کہانیاں سنیے، کیسے برف پر ان کو گرم گرم کھانے مل جاتے ہیں، کیسے بلیاں ان کو راستے دکھا دیتی ہے، کیسے ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے جب ان کو بے دردی سے کاٹا جاتا ہے. تو یہ مدد آج بھی ہوتی ہے. اسی طرح اپنے اسباب کی بجائے یقین رکھیے کہ کائنات کی تمام چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ آپ کے لیے ان کو پیش کر دے گا. شرط یہ ہے کہ آپ اس کے رستے میں سنجیدگی کے ساتھ نکلنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور صبر اور تقویٰ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے. حاجت روائی کے لیے لوگوں کی طرف نہیں، صرف اللہ کی طرف دیکھیے. لوگوں سے نہیں، اللہ سے لو لگائیے. آپ آج کی جنگوں میں بھی فتح یاب ہوں گے، کل کی جنگوں کی طرح صبر اور تقویٰ کے ساتھ. ابھی قصہ آگے چلتا جا رہا ہے اور اسی سے مورلز اینڈ لیسنز ملتے جائیں گے. اسی لیے آیت 133 سے 140 کو ذرا سا اپنے لیے سنیے گا. بات ہے میدان جنگ کی، اور اللہ کے نبی ایک اچھے قائد اور ایک پر امید انسان ہونے کے ناطے، ساتھیوں کے حوصلے بلند کرنے والے ساتھی ہونے کی نیت سے کیا کر رہے تھے؟ یہ خوشخبریاں تھیں، یہ آیتیں غزوہ احد کے درمیان میں آپ کی زبان مبارک پہ تھیں. کیا؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. और अपने रब की बख्शिश की तरफ और इस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसका अर्ज आसमान और जमीन के बराबर है, जो परहेजगारों के लिए तैयार की गई है। कौन होते हैं मुत्तकी? लिस्ट आउट कीजिए। उद्दत लिल मुत्तकीन के बाद खूबियां, अल्लसीना युनफिकून फिस्सर्राई वद्दर्रा, जो लोग आसानी में और सख्ती के मौके पर भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। अपने आप से पूछिए, हाथ खुला हो तो खर्च करती हूँ और जरा हाथ तंग हो तो क्या करती हूँ? ये अपना हिसाब हम खुद लेंगे। फिर दूसरी बात, वल काज़िमीन अलगैज़, गुस्से को पीने वाले। कज़ूम कहते हैं ये जो गले की नाली होती है ना, गुस्से की घूंट भरना, ये नहीं कि गुस्सा आता नहीं लेकिन आता है, पी जाते हैं। जैसे आपने कभी वो बॉटल देखी हो ना, हॉट वाटर बॉटल, उसका ढक्कन ऊपर से जोर से बंद करते हैं ना, ये कैफियत है कसूम की। यानी गुस्सा आ गया तो आप से बाहर नहीं होगे बल्कि गुस्से को पी जाते हैं, बल्कि इससे बढ़ के और लोगों से दरगुजर करने वाले हैं। अल्लाह ताला ऐसे नेक लोगों से मोहब्बत करता है। अल्लाह मुझे आपको ये खूबियाँ दे दे। अपने लिए दुआ करते हैं, अल्लाह सख्ती और नरमी दोनों में खर्च करने वाला बना दे। गुस्सा आ जाए तो काबू पाऊँ, लोगों से दरगुजर करूं और लोगों पर एहसान करूं, और फिर अगली इनकी खूबियां, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशा, और जब इनसे कोई नाशायस्ता काम हो जाए या कोई गुनाह कर बैठे तो फौरन अल्लाह का जिक्र और अपने गुनाहों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। फिर वाकई अल्लाह ताला के सिवा और कौन गुनाहों को बख्श सकता है? और वो लोग बावजूद इल्म के किसी बुरे काम पर अड़ नहीं जाते। अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को ऐसी खूबियों से मुत्तसिफ़ कर दे। अब जब इतनी प्यारी खूबियां होंगी तो मिलेगा क्या? उलाई का जजाऊ हूँ मगफिरत मे रबी व जन्नत, इन्हीं का बदला इनके रब की तरफ से मगफरत और जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। इन नेक कामों के करने वालों का सवाब क्या ही अच्छा है। तुमसे पहले भी ऐसे वाकयात गुजर चुके हैं, पर जमीन में चल फिर कर देख लो आसमानी तालीम के जुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। और अब इन सारी बातों के बीच में कुरान पाक की खूबी, हासा बयान लिन्नासि व हुदम व मौइज़तुल लिल मुत्तकीन, आम लोगों के लिए तो ये कुरान एक बयान है और परहेजगारों के लिए हिदायत और नसीहत है। अल्लाह में परहेजगारी के दर्जे पे इधर से हिदायत और नसीहत लेने वाला बना दे। अब हौसले टूट रहे थे तो हिम्मत बंधाई जा रही है, वला तहिनु वला तहसनु वअन्तुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ना सुस्ती करो और ना गमगीन हो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमानदार हो। इसको नोट कीजिए, प्यारे नबी की जुबान से ये जुमले सुन के आप एक होपफुल, उम्मीद बढ़ाने वाले कायद नहीं दिख रहे? कि कैसे जब कौम के हौसले टूट रहे हो, जब टीम के हौसले टूट रहे हो, जब उनकी गलती से कोई एक नुकसान हो जाए तो लीडर को चीखना चिल्लाना नहीं, धाड़ना नहीं, बल्कि तसलियां देनी। और तसली का अगला अंदाज तो और भी खूबसूरत है क्या? यमसस्कुम करहुन फकद मस्सल कौम करहुम मिसलुहु, अगर तुम जख्मी हुए हो तो तुम्हारे मुखालिफ लोग भी तो ऐसे ही जख्मी हो चुके हैं। हम दिनों को लोगों के दरमियान अदलते बदलते रहते हैं। तिल कल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, क्यों बदलते हैं? शिकस्ते ओहद इसलिए थी कि अल्लाह ताला ईमान वालों को जाहिर कर दे और तुम में से बास को शहादत का दर्जा अता फरमाए। अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत बातें हैं। आइए थोड़ा सा गौर व फिक्र करते हैं इन आयात पे। नेक कामों में हमेशा दूसरों से आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि वह सारी यू का लफ्ज आ गया। सदका दीजिए चाहे आप मालदार हों या तंगदस्त हों, क्योंकि यहाँ युनफिकून फिस्सर्राई वद्दर्रा की बात हुई। रात और दिन की घड़ियों में अल्लाह से कसरत से इस्तग़फ़ार कीजिए, क्योंकि यहाँ अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की बात हुई। फस्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम की सूरत में, और कुरानी रहनुमाई देखिए, तकवा वाली जिंदगी जिए ताकि दुनिया में तकलीफों और मसाइब से निजात मिले और आखिरत में जन्नत मिले। याद रखिए, जन्नत जो है ये तकवा टाउन है, वहाँ अहलुत तकवा होंगे। सारी जिंदगी आपको मुझे जिस चीज को, जिस खूबी को अपने अंदर लाना है वो तकवा है। फिर लोगों को माफ कर देने वाले को अल्लाह ने फजीलत दे दी। वलाफीन अनिन्नास, मोमिन दीन के सबब इज्जतदार और गालिब होता है। याद रखिए, मोमिन अपने कपड़ों से, अपने जूतों से, अपने रख रखाव से, अपनी गाड़ियों से इज्जत नहीं पाता। उसकी इज्जत इन अकरमकुम इंद अल्लाह यत्काकुम की सूरत में होती है। आज दुनियादार लोग करोड़ों लगा देते हैं इज्जत लें, लोग घर जाते हुए बातें ही कर रहे होते हैं कि इतने इसराफ की क्या जरूरत थी और ये और वो क्या था। तो गौर व फिक्र करते हैं। माल खर्च करना भी मुश्किल है, लेकिन गुस्सा पी जाना इससे भी मुश्किल है। लिखिए, ये इज्जत का सदका है। कभी गुस्सा आए ना तो ये सदका दिया करें कि मैंने अपनी जुबान का सदका करना है, मैंने अपनी अक्ल का सदका करना है। गुस्सा पीने वालों और माफ करने वालों से अल्लाह ताला मोहब्बत रखता है। मोमिन जिहाद में सुस्त और कमजोर नहीं होता, और अगर कभी थोड़ी सी कमजोरी आने लगे तो लीडर्स का काम है कि वो उनके हौसले बुलंद करे और उनको बड़ा करे। कुरान पाक सब के लिए बयान है, यानी लोग इसको एक किताब समझते हैं, लेकिन मुत्तकी इसको हिदायत और नसीहत समझता है। और ये तरबियती बातें मैदान जंग में जाकर सहाबा को क्यों सिखाई? इसलिए कि घर बैठकर तरबियत नहीं होती, सोने वालों की तरबियत नहीं होती, घर से बैठकर तनकीद करने वालों की तरबियत नहीं होती। मैदान जंग आज के दौर में ऐसा है जैसे दीन के नाम पे कोई काम हो और अमली कोशें। माशाल्लाह आप जो ऑन साइट लोग हैं, आप देखते हैं कि हर रोज कितनी एफर्ट हो रही होती है, कोशिश है, कहाँ टेक्निकल सेट है, कुर्सियाँ हैं, मेज़ हैं, लोगों के आम काम, ये सारा कुछ तरबियत है। तो अल्लाह ने सहाबा कराम की तरबियत कई मुकाम पर मैदान जंगों में जाकर करवाई। इसी की कुछ चीज़ें आगे हम आयतों में पढ़ेंगे। आयत नंबर 141, वली युमख्खिस अल्लाहुल्लज़ीन आमनू वयमहकल काफिरीन। ये भी वजह थी, अब जंगों की एक और वजह, कि अल्लाह ताला ईमान वालों को बिल्कुल अलग कर दे और काफिरों को मिटा दे। याद रखिए, जब कोई अमली तकाजा आएगा ना, दूध का दूध और पानी का पानी अलग होगा। कमज़ोर ईमान वाले छटेंगे मजबूत ईमान वालों से, मुनाफिक छट जाएंगे मुखलसिन से। इसीलिए अल्लाह ने कहा मैदान जंग या किसी अमली तकाजे का आना लोगों को छांटता है। आप देखिए, हम बड़ी ख्वाहिशें करते हैं ना, हाय अल्लाह ये मौका दे, हाय हमें भी मौका मिले, हमारे घर भी हो, हाय हमारे मुल्क में भी, हमारे शहर में भी हो, हाय हमारी जगह, हाय हमसे भी अल्लाह दीन का काम करे। बड़ी बड़ी दुआएं मांगी होती हैं, और जब वक्त आता है तो फिर हम ढीले, फिर मजबूरियों के परेशान, फिर हमारे साथ ये है वो है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ एक जनरल रूल दिया, अम खसिब तुम अंतत खुलुल जन्ना, क्या तुम ये समझ बैठे हो कि तुम जन्नत में यूं ही दाखिल कर दिए जाओगे। हालांकि अब तक अल्लाह ताला ने ये जाहिर नहीं किया कि तुम में से जिहाद करने वाले कौन है और सब्र करने वाले कौन है। जंग से पहले तो तुम शहादत की आरजू में थे, अब इसे अपनी आंखों से देख लिया। अब यहाँ आप देखिए तो सहाबे कराम की बातें पूरी हुई। आयत 143 तक टीम की बातें थी, जिसका खुलासा ले लीजिए, मुत्तकी कौन? अल्लाह की राह में खर्च करने वाले, गुस्से पर काबू पाने वाले, लोगों से दरगुजर करने वाले, गुनाहों पर इसरार ना करने वाले, गुनाह हो जाए तो फौरन इस्तग़फार करने वाले। जब टीम में ये खूबियाँ होती हैं तो अल्लाह की रहमत आने लगती है। सहाबे किराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीम थे, आपकी उम्मत थे। अब आगे कुछ बातें लीडरशिप की। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रसूल ही हैं, इनसे पहले बहुत से रसूल हो चुके हैं। क्या अगर इनका इंतकाल हो जाए, इस जुमले को नोट कीजिए, उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि अल्लाह के नबी के लिए वफात या मौत का लफ्ज़ बोलना आपकी गुस्ताखी है, तो कुरान तो खुद कह रहे, कुरान पाक में क्या आफ़ाइमा तौकुतिलन कलब तुम अलाकाबिकुम, क्या अगर इनका इंतकाल हो जाए या ये शहीद हो जाएं तो तुम इस्लाम से अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे? फिर जो कोई फिर जाए अपनी एड़ियों पर तो हरगिज़ अल्लाह ताला का कुछ ना बिगाड़ सकेगा, अन करीब अल्लाह ताला शुक्र गुजारों को नेक बदला देगा। क्या पता चला कि लीडर्स के चेहरों को देख कर आने वाले और उनके ना होने पे ना आने वाले शौक से जाएं, अल्लाह का काम चलता रहेगा। और दीन के काम का तरीका भी यही होना चाहिए कि आपके सामने जितना काम हो रहा है आपकी गैर मौजूदगी में और आपके दुनिया से जाने के बाद ज़्यादा हो। हक की भी यही पहचान है, उनकी ज़िंदगी में उनको सताया जाता है, तकलीफ़ें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, लेकिन बाद में उनके फॉलोअर्स, आज देखिए उलमाए किराम को, मुहद्दिसीन को, इमाम बुखारी को, ज़िंदगी में जेलों में डाले गए। और हर एक को आजमाया जाता है, हक वाले को आजमाया जाता है। आजमाइशें आती, परेशानियाँ आती, इल्ज़ाम लगते, बहतान लगते, प्रोपेगंडे होते, शर्मगेजी होती। मुझे अपनी टीचर्स में एक बड़ी अजीज़ मेरी टीचर है, उनकी बात याद आ गई कि मुखालफतों का आना आपके पैगाम की सच्चाई की दलील है, कबूलियत है, आपकी तासीर है, इसलिए इसकी फिक्र ना कीजिए, अपना काम करते जाइए। बात भी ये सच है। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में एक बेहतरीन नमूना सहाबे के सामने थे, मैदान जंग में जाकर लड़ रहे हैं और सहाबे कराम को साथ लेके चल रहे हैं, और अकीदा जंगों में ले जाकर कैसे पुख्ता किया जा रहा है। आयत 145 को देखिएगा, जिसमें अल्लाह ताला ने अकीदे की इस्लाह फरमा दी, व मा कान अली नफ्सिन अंतमूता इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबं मुअज्जला, बगैर हुक्म इलाही के कोई जानदार नहीं मर सकता, मुकर्रर शुदा वक्त लिखा हुआ है। दुनिया की चाहत वालों को हम कुछ दुनिया दे देते हैं और आखिरत का सवाब चाहने वालों को हम वो भी देंगे, और एहसान मानने वालों को हम बहुत जल्द नेक बदला देंगे। बहुत से नबियों के हम रिकाब होकर यानी उनका साथ देकर बहुत से अल्लाह वाले जिहाद कर चुके हैं, इन्हें भी अल्लाह की राह में तकलीफें पहुंची, लेकिन ना तो उन्होंने हिम्मत हारी, ना सुस्त रहे और ना दबे, और अल्लाह ताला सब्र करने वालों को ही चाहता है। इस आयत को हाईलाइट कर लीजिए। अगर आपको अल्लाह के दीन का काम करने का शौक है, आप अंसारुल्लाह में से हैं, आप जिम्मेदारान में हैं, अल्लाह ने आपको अपने इस पैगाम के लिए एक उस्ताद बना के चुना है, तो ये खूबियां अपने अंदर लाइए। हिम्मत नहीं हारनी, सुस्तियां छोड़ दीजिए, लिथार्जिक ना बने, किसी से दबना नहीं हक के मामले में, और सब्र करते ही जाएं करते ही जाएं। इंजाम क्या होगा, अल्लाह आपकी मदद करेगा। और फिर भी अगर घर में इर्द गिर्द माहौल में कोई खराबी कोई परेशानी आए, तो जुबान पर दुआएं रखिए। और वो दुआएं क्या हैं, वमा कान कौलहुम इल्ला अन कालू रब्बना अग्फिर लना ज़ुनूबना व इस्राफना फी अमरीना वसब्बित अक़दामना वंसुरना लिल कौमिल काफिरीन। आमीन तो कह दीजिए। वो यही कहते रहे कि ऐ परवरदिगार, हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमसे हमारे कामों में जो बेजा ज्यादती हुई है इसे भी माफ़ फरमा, और हमें साबित कदमी अता फरमा, और हमें काफिरों की कौम पर मदद दे। आमीन। दुआ का नतीजा क्या हुआ, फ़ाताहुमुल्लाहु सवाब दुनिया व हुस्न सवाब आखिरा, अल्लाह ताला ने इन्हें दुनिया का सवाब भी दिया और आखिरत के सवाब की खूबी भी अता फरमाई। अल्लाह ताला नेक लोगों से मोहब्बत करता है। तो नोट कीजिए, ईमान वालों की खसूसियात, अच्छे साथियों के बगैर दीन का काम मुमकिन नहीं। अंबिया कराम को भी ज़रूरत थी साथियों की। आगे जाके सूरह सफ में पढ़ेंगे हज़रत ईसा का कौल, मन अंसारी लल्लाह, कौन अल्लाह के रास्ते में मेरा मददगार। तो लिहाजा वन मैन शो दीन नहीं होता, इससे काम नहीं बढ़ता। ईमान वाला सिर्फ नबी सल्लम की ज़ात से नहीं, बल्कि आपकी बात से, आपके मिशन से भी मोहब्बत रखता है। वो ना सुस्त पड़ता, ना मुश्किलात में हिम्मत हारता, वो अपनी नेकियों पर गरूर नहीं करता, बल्कि नेकी करने के बाद भी मग़फ़रत तलब करता है। इन आयात को पढ़कर तदब्बुर करते हैं, अमल कैसे होगा, सच्चे दिल से अल्लाह से शहादत की दुआ मांगिए। ओपरी ओपरी नहीं, ये नहीं कि हाय मरना तो नहीं लेकिन शहीद हो जाए। अल्लाह अपने रास्ते में शहादत दे। जो तेरा रास्ता है वो इल्म का है, अमल का है, वो मैदान जंग का है, जो तेरी नज़र में तेरा काम है, अल्लाह उसी के रास्ते में मौत देना। इसी तरह इन आयत में बार बार मौत का जिक्र है ना, वमा काना लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाह, फिर नबी सल्लम के लिए लफ्ज़ आ गया फ़इम्मा था। तो मौत के मौजू पर कोई बात सुनिए, कामों में रख लीजिए। अभी रमज़ान से कुछ अरसा पहले अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब से एक सीरीज़ गई थी ईमान बिल गैब में, उसमें मौत के मौजू पर 4 लेक्चर्स हुए थे, खुबर और दमाम में हम थे उन दिनों में। आप लिख लीजिए, इसका लिंक आपको साथी भेज भी देंगे, और आप सुनिए, उसमें हुस्न खात्मा भी है, बुरी मौत से बचने की बातें भी हैं, और जर्नी ऑफ द सोल यानी रूह का सफ़र, और मौत पे एक जनरल लेक्चर भी मौजूद है, और बहुत लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया। इसी तरह अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद मुतय्यन कीजिए। याद रखिए, रोज़ जीते हैं रोज़ मरते हैं, सुबह होती शाम होती ज़िंदगी यूं ही तमाम होती, ये तो कोई जीना नहीं है। कभी बैठकर अकेले में सोचे मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है, आज तक मैंने क्या खट्टा, मैंने क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया। इस वक्त आप में से जो बहनें पहली दफ़ा कुरान सुन रही हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ। ये कुरान आपको अल्लाह से भी जुड़ाता है, नबी के करीब भी कराएगा, और साथ ही साथ आपको मकसद हयात देगा। और अगर आपको अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को देखकर ये मकसद हयात मिल जाए कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, तो इसको अपना लीजिए। और इसका पहला रास्ता कुरान को ख़ुद सीखना है। नियत करते जाइए रमज़ान, और रमज़ान के बाद हमने कुरान पाक को तफसीर से सीखना है, सबीलुल जन्ना को ज्वाइन करना है, ताकि हम इससे बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठा सकें। फिर कुरान पाक से रहनुमाई कैसे मिली, मुसीबतों की आजमाइश के ज़रिए अल्लाह अच्छे बुरे लोगों को अलग करता है। अल्लाह हमें हक पे रखे और अच्छा बनाए, ताकि ऐसा ना हो कि हम शर्मिंदा हो जाएं किसी भी आजमाइश के बाद। आखिरत की नेमतें दुनिया में मेहनत से पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ अनथक मेहनत करनी है। यहाँ एक जम लिख लीजिए, ये दुनिया काम की जगह, आखिरत आराम की जगह। मौत मुकर्रर वक्त से पहले नहीं आती, इसलिए किसी की बात से, किसी की धमकी से, किसी के कोई ऐसे नेगेटिव जुमले से मत डरिए, और मैदान जंग में अपने बेटों को भेजने से मत डरिए। क्योंकि मौत अपने वक्त पे आएगी। एक शख्स ने एक कश्ती में बैठे हुए शख्स को देखा, बहुत डर रहा था। कहा, क्या हुआ? तुम्हारे बाप कहाँ मरा? कहा, कश्ती चलाते हुए। दादा कहाँ मरा? कहा, कश्ती चलाते हुए। कहा, तुम्हें कश्ती में बैठते हुए डर नहीं लगता? वो जो कश्ती चलाने वाला था उसने कहा कि तुम्हारा बाप कहाँ मरा? कहा, बिस्तर पे। कहा, दादा कहाँ? बिस्तर में। तो कहा, तुम्हें बिस्तर पे जाते हुए डर नहीं लगता? तो याद रखिए, शहादत की तमन्ना करना पसंदीदा है, ना पसंदीदा नहीं। दीन के हर काम के लिए बासलाहियत अफराद तैयार कीजिए, वक्त आने पर दूसरा पहले की जगह संभाल लेगा। अल्लाह का काम इंसानों के जाने या रुकने से नहीं रुकता। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना अल्लाह की मदद को लाने का जरिया है। मुजाहिदीन अपने वसाइल की बजाय अल्लाह के सहारे पर निकलते हैं और अल्लाह की मदद का उनको यकीन होता है। और इसी तरह से मैदान जंग में वही जाए जिसे अल्लाह का दीन अपनी जान से प्यारा हो। मौत तो अपने वक्त पे आएगी, लेकिन इंसान वहाँ निकल कर अल्लाह को दिखा देता है कि दश्त तो दश्त हैं, सहरा भी न छोड़े हमने, कि बहरे जुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। कुछ और बातें, जंगों के दौरान लोगों को साजिशों का मौका भी मिलता था, कॉन्स्पिरेसीज भी होती थी। मुसलमान तो जज्बे ईमान और जज्बे जिहाद में लड़ रहे होते थे, और वहाँ मदीना में मौजूद यहूद और दूसरे मुनाफिकीन किस किस्म की बातें करते रहते थे। उससे कुछ अल्लाह ताला ने गाइडलाइन दी आयत नंबर 149 से ऑनवर्ड। या अय्युल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफरू यरुद्दूकुम अला अक़ाबिकुम फ़तन्क़लिबू ख़ासिरीन। ऐ ईमान वालो, अगर तुम काफिरों की बातें मानोगे तो वो तो तुम्हें तुम्हारी एड़ियों के बल पलटा देंगे, यानी तुम्हें मुर्तद कर देंगे, तुम्हें दीन से पीछे कर देंगे। फिर तुम ना मुराद हो जाओगे, बल्कि अल्लाह ताला ही तुम्हारा मौला है और वही बेहतरीन मददगार है। ग़ज़वे उहद के बाद अबू सुफियान ने एक जुमला बोला था, लना उज्जा वला उज्जा लकुम। उसके जवाब में अल्लाह के नबी ने कहलवाया था, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम। उसी का तذکرہ इस आयत में, हम अन करीब काफिरों के दिलों में रोब डाल देंगे। ये भी नोट कर लें, जितना आपका ईमान ज्यादा होगा ना, कुफार उतना आपसे डरेंगे। इस वजह से ये कि अल्लाह के साथ इन चीज़ों को शरीक करते हैं जिसकी कोई दलील अल्लाह ने नहीं उतारी, इनका ठिकाना जहन्नुम है और इन जालिमों की बुरी जगह है। और अब जो हुआ उसके ऊपर कमेंट, वलकद सदकुकुमुल्लाहु वादहू। अल्लाह ताला ने तुमसे अपना वादा सच कर दिखाया जबकि तुम इसके हुक्म सीने काट रहे थे, यहाँ तक कि जब तुमने पस्त हिम्मती इख्तियार की और काम में झगड़ने लगे और नाफरमानी की। इसके बाद इसने तुम्हें तुम्हारी चाहत की चीज़ दिखा दी, तुम में से बास दुनिया चाहते थे और बास का इरादा आखरत का था, तो फिर इसने तुम्हें इनसे फेर दिया ताकि तुमको आजमाए। यकीनन इसने तुम्हारी लग्जिश से दरगुजर किया, और ईमान वालों पर अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। कितने खूबसूरत इसमें वादे हैं। अब अगली आयतों में खास तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तनाजर से देखिएगा। एक लीडर, जब कौम के हौसले टूटे, साथियों में भगदड़ मच गई और मुसलमान एक दर्रा छोड़ने की सजा भुगतते हुए खालिद बिन वलीद के उस लश्कर का सामना न कर सके, और वो 50 सहाबा जिनको अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां नॉमिनेट किया था उसमें अक्सर अपनी जगह छोड़ गए, तो अब नबी का पीछे से क्या मामला था? इस तो सैदून वला तलवून अला अहदिन व रसूल यदुकुम फी उखराकुम। मैं इस आयत को पढ़ती हूँ तो मेरा दिल भर जाता है। एक लीडर मुश्किल में खड़ा रहता है, वक्ती तौर पे साथी चाहे गिर जाए। मैं सोचती हूँ अल्लाह के नबी के उस वक्त दिल पे क्या गुजरती होगी, जरा सुनिएगा। सहाबा की तरफ इशारा है, जबकि तुम चढ़े चले जा रहे थे और किसी की तरफ तवज्जो तक नहीं करते थे, और अल्लाह के रसूल तुम्हें तुम्हारे पीछे से आवाज़ें दे रहे थे। अब देखिए, लीडर्स का ये काम होता है, छोड़ने वालों को पुकारता है, ढीले पड़ने वालों को हिम्मत दिलाता है, ना आने वालों को बुलाता है, जिनके दिलों में शक व शुबहात होते हैं उनके शक दूर करने की कोशिश करता है, क्योंकि ही केयर्स, वो तुम्हारी केयर करते हैं, तुम्हें पीछे से आवाज़ें दे रहे हैं। और तुम नहीं सुनते तो नुकसान क्या होता है? जब अपने बड़ों की बात नहीं मान देना, उनके साथ क्या होता है उसको जहन में रखिए। इसके बाद तुम्हें गम पर गम पहुंचाया कि तुम फौत शुदा चीज़ पर गमगीन ना हो और ना पहुंचने वाली तकलीफ पर उदास हो। अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम आमाल से खबरदार है। मेरा नबी कितना सताया गया दुश्मनों ने, कैसे उनके रास्तों में रोड़े अटकाए, कैसे साथियों से गलतियां हुई, खताएं हुई, लेकिन जमे रहे, दबे रहे, कभी ये नहीं कहा मेरी जान मेरी जान, हमेशा अल्लाह का दीन अल्लाह का दीन, मेरी उम्मत मेरी उम्मत। अगर उस दिन अल्लाह के नबी भी हौसला हार जाते तो इस्लाम की तारीख तो बनने से पहले ही बिगड़ जाती। तो इन आयात पे तदब्बुर करते वक्त अमल की बातें नोट कीजिए। कुफार की मुशाबहत वाले अमाल से बचना है, क्योंकि वो अल्लाह के गज़ब को भड़काएंगे। माल की दौड़ साबित कदमी की राह में आजमाइश है। आज मेरा बड़ा दिल करता है हम भी नबी जैसा ज़िंदगी का तरीका इख्तियार करें, आपकी तरह हमारे चैलेंजेस हों। ठीक है, अगर हम मैदान जंग में नहीं हैं तो प्रोजेक्ट्स हों, इल्मी महफिलें हों, लोगों को अंधेरों से निकालें, इस पे वक्त लगे, जान जाए, उधर दर्स, उधर बात, उधर बात, लेकिन कर क्यों नहीं पाते? हाय घर, हाय मेरा एक छोटा सा बच्चा है, हाय रोटी पकानी, हाय आज मेट नहीं आई। हम छोटी छोटी चीज़ों पे पीछे हो जाते, कभी माल कमाना, हाय जॉब है क्या करें, हाय ये है वो है, कभी शॉपिंग है। तो याद रखिए, इस रास्ते में वही जाए जिसे अल्लाह का दीन सब चीज़ों से ज़्यादा प्यारा है। नबी के पास सारे ही हुनर थे, नबूवत से पहले ताजिर थे, कैसी प्यारी तिजारत की कि हज़रत खदीजा का दिल आप पर आ गया, लेकिन जब एक एक करके दीन के तकाजे बढ़े तो सब छोड़ दिया। इसलिए अपने ऊपर गौर कीजिए। इसी तरह से इस सारी चीज़ों में गलत फहमियाँ भी हो जाती हैं, तो सुलह करवाने की कोशिश भी करनी चाहिए। कुरान से रहनुमाई क्या है कि शिर्क दिलों में खौफ, बेचैनी और तंगी का सबब है। इसलिए आप देखिए कि मुशरिक अक्सर डिप्रेशन में जाते हैं। ऐसे शिर्क से अल्लाह के बंदों को बचाना है, अपने आप को दुनियावी फितनों और गुनाहों से बचाना है, और गैर मुस्लिमों की इताअत करना उन चीज़ों में जो इस्लाम के मुनाफी हों या हमारे ईमान के खिलाफ है। गौर व फिक्र क्या है कि दुनियावी माल दौलत की हिर्स गलबे को शिकस्त में बदल देती है। गलत फहमी होगी सहाबा को कि जंग पूरी हो गई, और सामने जब माल गनीमत दिखा तो उसको लेने के लिए अपनी जगह छोड़ी, दुश्मन को पीछे से आने का मौका मिल गया। जीती हुई जंगें शिकस्त में बदलने लगती हैं दुनिया की मोहब्बत की वजह से। इसमें दीन के साथियों के लिए बहुत अमल की बातें। कोई प्रोग्राम शुरू से आखिर तक आप अपनी जगहों से ना हिलें, ये ना सोचें कि अब तो फंक्शन ख़त्म हो गया, अब चलो हम भी अपनी जगह छोड़ दें, जल्दी चले जाना, देर से आना, ये सारे सिस्टम को बिगाड़ देता है। मुसीबत पर सब्र करने से मोमिन को अल्लाह के फजल से अजर और सवाब मिलता है। इख्तलाफ और नाफरमानी मुसलमानों की कमज़ोरी का सबब है, और जमात में चंद लोगों की गलती पर पर्दापोशी के लिए नसीहत सबको करनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि सहाबा कराम से गलती हुई, मामला बिगड़ा, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला देखिएगा कि कैसे आपने काटा नहीं, शर्मिंदा नहीं किया। क्यों? इसलिए कि जब भी काम होंगे गलतियां होंगी। हर गलती करने वाले को अगर आप काट देंगे तो तरबियत किसकी करेंगे? लीडरशिप का रोल इसमें नबी का नोट कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में चूंकि अपने सहाबा के लिए मोहब्बत थी, इनको अच्छे लगते थे वो लोग जो खलूस के साथ काम करते थे, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि उनमें हर खूबी हो, लेकिन उनके खलूस को उनकी सबसे बड़ी खूबी समझकर आप दरगुजर करते रहे। अपने लिए अमल की बातें लिखिए कि एक कसूर की वजह से पिछले सारे कारनामों को भूल नहीं जाना चाहिए। नए नए आने वालों की गलतियों को इग्नोर कीजिए। एक सहाबी थे, अभी उनको नहीं मालूम था कि नमाज में बात करने की इजाज़त ख़त्म हो चुकी है। दौरान नमाज छींक आई किसी सहाबी को, तो इस नए साथी ने कह दिया, या रहमकल्ला, अल्लाह आप पे रहम करे। अब सहाबा ने जब उनको नमाज में बोलते देखा तो गुस्सा आ गया, घूरने लगे, अपने रानों पे हाथ फेरने लगे। अब वो घबरा गया बेचारा सहाबी, क्या हुआ? अल्लाह के नबी ने कोई रिएक्शन शो नहीं किया। नमाज पूरी हुई, पुरसकून होकर उनकी तरफ देखा और क्या कहा, ये वो सहाबी खुद बयान करते हैं। कहते हैं, ना मैंने अपनी ज़िंदगी में आपसे पहले और ना आपके बाद इतना प्यारा मुअल्लिम देखा, तो आप बहसियत मुअल्लिम कैसे थे? आपने ना मुझे डांटा, प्यार से देखा और बस नसीहत की कि नमाज तो तस्बीह और तहमीद है। इमाम जोजी कहते हैं कि जो लोगों की तरबियत करें उनको नसीहत है इसमें कि लोगों की छोटी छोटी गलतियों पे उनको शर्मिंदा ना करो। एक बद्दू ने मस्जिद में पेशाब किया, अल्लाह के नबी सल्लम ने कुछ भी नहीं कहा, खुद उसके ऊपर पानी डाला। तो याद रखिए, तरबियत के लिए मुअल्लिम और अमली कोशिशों की ज़रूरत होती है। अच्छा मुअल्लिम मिल जाए और आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाए जिसमें आप काम करें और गलतियां करें, तो आप निखर जाएंगे। घर बैठे कभी तरबियत नहीं होती। और याद रखिएगा कि अल्लाह के नबी की जो खूबियां आपकी मैदान जंगों में हमें दिखती हैं, अमली ज़िंदगी में भी ऐसी ही खूबियां हैं। यानी आपको अल्लाह ताला ने हर तरह से खूबसूरत रहनुमा बनाकर भेजा था। अल्लाह आपको मुझे भी अपने साथियों को बुरा भला कहने की बजाय इन्हीं खूबियों के ऊपर अमल पैरा बनाए, और अल्लाह ताला हमारे अंदर नरमी पैदा कर दे, जिसका तذकरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की सूरत में आगे आने वाला है। आइए देखिए आयत नंबर 154 से ऑनवर्ड अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं, सुम्मा अनज़ल अलैकुम मिन बादी गम्मिन अमनतन, फिर फिर इसने इस गम के बाद तुम पर अमन नाजिल फरमाया और तुम में से एक जमात को अमन की नींद आने लगी। हाँ, कुछ वो लोग भी थे जिन्हें अपनी जानों की पड़ी हुई थी, अल्लाह ताला के साथ नाहक जहालत भरी बदगुमानियां कर रहे थे और कहते जा रहे थे, क्या हमें भी किसी चीज का इख्तियार है? देखिए, मुनाफिक की नजर हमेशा अपने पर, मुझे क्या मिलेगा, हमें भी कोई अथॉरिटी मिलेगी, हमें कोई डिस्काउंट मिलेंगे, हमें कोई अथॉरिटीज मिलेंगी, कुछ हमारी भी बात सुनी जाएगी, क्या बात है, मैं तो कोई अहमियत ही नहीं देता। इस तरह की बातों पे ये कमेंट है। और अपनी जानों की पड़ी थी कि हाय, हमें ना कोई नुकसान हो जाए, हमारा नाम ना कोई ले दे कि ये काम तुमने करना, तुमने करना। फरमाया, वो अल्लाह ताला के साथ नाहक जहालत भरी बदगुमानियां कर रहे थे और कहते थे कि क्या हमें भी किसी चीज का इख्तियार है? आप कह दीजिए, काम कुल का कुल अल्लाह के इख्तियार में है। ये लोग अपने दिलों के भेद आपको नहीं बताते, कहते हैं कि अगर हमें भी कुछ इख्तियार होता तो हम यहाँ कत्ल ना किए जाते। देखिए, लव कह रहे हैं, काश काश काश, ये जुमला भी पसंदीदा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि गो तुम अपने घरों में भी होते, फिर भी जिनकी किस्मत में कत्ल होना था वो तो मक्तल की तरफ चल खड़े होते। अल्लाह ताला को तुम्हारे सीनों के अंदर की चीज़ का आजमाना और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है इसको पाक करना था, और अल्लाह सीनों के भेद से आगाह है। तुम में से जिन लोगों ने उस दिन पीठ दिखाई जिस दिन दोनों जमातों की मुठभेड़ यानी मुकाबला हुआ, ये लोग अपने बास करतूतों के बायस शैतान के फिसलाने में आ गए। इसको नोट कीजिएगा, कभी कभी इंसान अपने किसी गुनाह की वजह से शैतान के बहकावे में आ जाता है। अल्लाह हमारा वो गुनाह माफ़ कर दे जिसकी वजह से हम बार बार शैतानी चालों में आ जाते हैं। वलकदफ़ल्लाफ़ुरहलीम, लेकिन यकीन जानो कि अल्लाह ताला ने इन्हें माफ़ कर दिया, अल्लाह ताला बख्शने वाला और तहम्मुल वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तुम इन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने कुफर किया और अपने भाइयों के हक में जबकि वो सफर में हो या जिहाद में हो कहा कि अगर ये हमारे पास होते तो ना मरते और ना मारे जाते। इसकी वजह ये थी कि इस ख्याल को अल्लाह ताला इनकी दिली हसरत का सबब बना दे। अल्लाह ताला जिंदा करता और मारता है, और अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को देखता है, अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को देखता है, तुम भी तो अपने आप को देखो। और असल बात क्या है, कसम है, अगर अल्लाह की राह में शहीद किए जाओ या अपनी मौत मरो तो बेशक अल्लाह ताला की बख्शिश और रहमत उससे बेहतर है जिसे ये जमा कर रहे हैं। ला मग़फ़िरतु मिनल्लाहि व रहमतुन खैरुम मिम्मा यजमाउन। क्या खूबसूरत सबक है, आइए तदब्बुर करते हैं। अमल की बात, मुसीबत पे मुब्तला शख्स को अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखने की रग़बत दीजिए, क्योंकि जब मुसीबत आती है ना तो ईमान भी बिगड़ने लगता है। लोग अल्लाह ताला के बारे में अजीब व गरीब गुमान रखते हैं, इससे बचना चाहिए। मोमिन की आदत क्या है कि वो मुश्किलात में अल्लाह से अच्छा गुमान रखता है। अपने गुनाहों पर इस्तग़फार करते रहें और हुस्ने खात्मा की दुआ करें, क्योंकि एंड वेल इज़ गुड वेल। अलमालु बिल ख़वातीम, हमारा कोई गुनाह अल्लाह से दूरी की वजह हो सकता है, अल्लाह की कुर्बत के लिए ये सोच कर सदका दीजिए। रहनुमाई कैसे लेनी है, नेक कामों में हमेशा दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक गुनाह दूसरे गुनाह का सबब है, जैसे एक पाँव सीढ़ी पे रखते हैं ना तो फिर दूसरा ऊपर तीसरा, तो सीढ़ियाँ ना गुना सीढ़ियों की तरह होते हैं, एक निकाल दें दूसरा इंशाल्लाह खुद ब खुद निकल जाएगा। इसलिए तौबा भी करनी है और अपने आप को चेक भी करना है। खुशहाली के वक्त में गुना तंग हाली में बहक जाने का बायस बन जाता है, तो अच्छे दिनों में अल्लाह ताला का कुर्ब रखिए। गौर व फिक्र की चंद बातें, नींद रंजो गम और तकालीफ में राहत और सुकून देती है। ईमान की अलामत है कि चारों तरफ जंग भी लगी और आप आराम से सो रहे हैं। मोमिन में टेंशन नहीं होती, स्ट्रेस नहीं होती, वो बड़ा पुरसकून है। वो कहते हैं ना कि जिससे हो जिगरे लाला में ठंडक पैदा। आपका मिजाज ऐसा होना चाहिए कि दूसरों को आपके पास आकर सुकून मिले। परेशान हाल बंदा आए आपके पास खुश हो जाए, बहुत बड़ा मसला लेकर आए आपके पास आकर के कोई बात ही नहीं है, बड़ी बात नहीं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही साथी थे। दो रुखे शख्स की खुदगर्जी इसे बेखौफ और पुरअमन नहीं होने देती, इसलिए दो रुखेपन से अपने आप को दूर करना है। हाकिम इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। वक्त आने पर इंसान अपनी मौत की जगह पर खुद पहुंच जाता है या पहुंचा दिया जाता है। शहीद के लिए ये अकीदा रखना कि अगर जिहाद पर ना जाता तो ना मरता, ये ईमान का जोफ है। अल्लाह ताला की बख्शिश और रहमत दुनिया के तमाम फायदों और लज्जतों से बेहतर है। तो क्या कहेंगे, अल्लाह हमें बख्श दे, अल्लाह हम पे अपना रहम फरमा। आज आप दुनिया में कंफर्ट लेते हैं, चैन लेते हैं, नरम गद्दे, गरम बिस्तर, गरम गाड़ियाँ, नरम गरम बिस्तर, सब कुछ, लेकिन सुकून नहीं मिलता। तो सुकून तो मिलेगा तलवारों की छाओं में भी, अगर अल्लाह के लिए निकले होंगे। सुकून तो मिलेगा अल्लाह के रास्ते में जिद्दोजहद करते हुए, इल्म को सीखते और सिखाते हुए, मेहनतें और मशक्क़तें करते हुए। तो वो आराम आराम नहीं जिसके बाद काम पड़ा हो। इसीलिए अब अकीदे की इस्लाह की चंद मजीद बातें, आयत नंबर 158 से। वलई मुत तुम औ कुतिल तुम लाइलल्लाही तुहशरून। देखिए बार बार मौत का जिक्र आ रहा है इसमें। बिल यकीन ख्वा तुम मर जाओ या मार डाले जाओ, जमा तो अल्लाह ही की तरफ किए जाओगे। यहाँ तक सहाबा की बातें। अब यहाँ नोट कीजिएगा 158 को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार। ये था किरदार नबी, ये है रहमतुल आलमीन, ये है उसवतुल आलम, ये है वो शख्स, वो किरदार जिसने लोगों को जोड़ा और काफिरों से भी मोहब्बत मिली, दुश्मनों से भी सादिक और अमीन का लकब पाने वाले अल्लाह के नबी। फबिमा रहमत मिन अल्लाह लिन्त लहुम वलो कुन्त फज्जन गलीज़ल क़ल्बि लन्फद्दु मिन हौलिक। अल्लाह तआला की रहमत के बायस आप इन पर रहम दिल हैं, और अगर आप बदजुबान और सख्त दिल होते तो ये सब आपके पास से छट जाते। अपना जायजा लीजिए, क्या मैं बदजुबान तो नहीं, सख्त दिल तो नहीं, अपने साथ काम करने वालों की बेइज्जती तो नहीं करती? माफी मांग लीजिए, किसी का दिल तोड़ दिया, न जाने कल आगे कितनी पकड़ हो जाए। और अगर ये ऐसे होते तो क्या होता, ये सब आपके पास से छट जाते। आज देखिए कई लोग तन्हा ही रहते हैं, अकेले काम शुरू करते हैं, 10 साल बाद भी अकेले ही होते हैं, 15 बाद भी, फिर कहते लोग नहीं अच्छे, हमें सवाब नहीं मिले, पैसा नहीं है हमारे पास। नहीं, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ने अपने नबी की सूरत में आपको दिखा दिया, तनहा चले, लोग मिलते गए, काफिला बनता गया, शर्त ये कि आपका अपना किरदार अच्छा हो। अब जिन लोगों से गलती हो जाए क्या करें, फाफ वन हूँ वस्तगफिर लहुम वशाविर हूँ फिल अम्र। आप इनसे दरगुजर करें और इनके लिए इस्तगफार करें और काम का मशवरा इनसे किया करें, फिर जब आपका पुख्ता इरादा हो जाए तो अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, बेशक अल्लाह ताला तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर, क्या पता चला, दाईये दीन की दो नापसंदीदा बातें, वो क्या, सख्त दिली और सख्त बयानी। सख्त दिली क्या थी, लोगों को गलत समझते ही रहना, हाय मेरी टीम नहीं अच्छी, हाय मेरे लोग नहीं अच्छे, हाय हमारे साथी नहीं अच्छे, हमारे टीचर नहीं अच्छे, फलां नहीं अच्छे, वो नहीं अच्छे। और सख्त बयानी क्या है, जुबान से गलत बातें निकालना। ये नरमी लाने की जरूरत है। और अल्लाह तसल्ली देते हैं कि साथी तो तुम्हारे जैसे इंसान ही हैं, गो कि आप जैसा कोई इंसान नहीं, लेकिन आप ये बात याद रखिएगा, वो क्या, इन यंसुरकुम अल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो इसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे। ईमान वालों को अल्लाह ताला पर ही भरोसा रखना चाहिए, ये है अकीदा। लोगों का साथ अच्छा लगता है, लेकिन उनके ना होने का सोचकर जान ना निकल जाए, यार ये चला गया तो काम रुक जाएगा, हाँ ये ना हुआ तो मेरा काम नहीं होगा, सब चले जाए, अल्लाह का साथ काफी है। मैदान जंगों में लोग अफवाहें फैलाते थे, एक चादर ना मिली तो कुछ ने सोचा कि अल्लाह के नबी ने ले ली होगी। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी के बारे में क्या कहा, वमा काना लिन नबी यगुल, नामुमकिन है कि नबी से खयानत हो जाए, हर खयानत करने वाला खयानत के लिए वह क़यामत के दिन हाजिर होगा, फिर हर शख्स अपने अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और वह जुल्म ना किए जाएंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह लगे हुए इल्ज़ामों को धोता है। आप अल्लाह के काम करें, अल्लाह खुद ब खुद आप पे लगे हुए इल्ज़ाम को धुलवा देगा, क्योंकि अल्लाह ताला की सुन्नत क्या है, अफ़ा मन इत्तबा रिदवान अल्लाही कमन बा अभी से ख़तिम मिन अल्लाह, क्या बस वो शख्स जो अल्लाह ताला की खुशनुदी के दर पे है, इस शख्स जैसा है जो अल्लाह ताला की नाराज़गी लेकर लौटता है, और जिसकी जगह जहन्नुम है वो बदतरीन जगह है। अल्लाह ताला के पास इनके अलग अलग दर्जे हैं और इनके अमाल को अल्लाह बखूबी देख रहा है, यानी जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना इखलास होगा उतनी अल्लाह की मदद आएगी। और बात ये है, नेमतों में बड़ी नेमत ये है सिराज मुनीरा, क्या, लकद मन अल्लाह अलल मुमिनीन इस बार सफीहिम रसूल मिन अनफुसिहिम, बेशक मोमिनों पर अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि इन्हीं में एक रसूल इनमें भेजा जो इन्हें इसकी आयतें पढ़कर सुनाता और इन्हें पाक करता और इन्हें किताब व हिकमत सिखाता है। यकीनन ये सब इससे पहले खुली गुमराही में थे। ये है जी सिराज मुनीरा। पहले पारे में देखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम। दूसरे पारे में देखा कि अल्लाह ने नबी को भेज दिया। तीसरे पारे में उसी नबी की कुछ और बातें बताकर आज यहाँ बता दिया कि नेमतों में एक नेमत जिसका अल्लाह ने एहसान जितलाया, मन कहते उस नेमत का जिसका एहसान जितलाया जाए, बहुत बड़ी नेमत। तो क्या तज़किया और तरबिया जो नबी ने किया सहाबा का, और वो मैदान जंग से भी ना पलटे, तलवारों की छाओं में भी उन्होंने अपने आप को जमाए रखा। आज ये तरबियत का अंदाज़ है। एग्जैक्टली ये आयत है जिसके ऊपर साथियों की तरबियत की जाती है। यही है वो आयतें जिसके ऊपर स्टूडेंट्स और तालिबे इल्मों को कुरान के दौरान सिखाया जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे निस्फारा हुआ।